ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आंदोलनरत शिक्षकों से तुरंत वार्ता कर विद्यालय लौटने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अपील। रूपंदेही की दानव नदी में लापता 3 लोगों में से एक का शव हुआ बरामद। सुनसरी की सप्तकोशी नदी में नहाते समय डूबने से 2 लोग लापता और ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री विद्या भट्टराय ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा है। ये जानकारी मंत्री के प्रेस संयोजक रामजी रमसाल ने दी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब विद्यालय शिक्षा आयन जारी करने की मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन अपने 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। मंत्री के इस्तीफे के पीछे की प्रमुख वजह इसी आंदोलन को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आंदोलनरत शिक्षकों को तुरंत वार्ता कर विद्यालय लौटने का आह्वान किया है। नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन के 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ओली ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था द्वारा वहनीय और संभव होने वाले शिक्षकों की मांगों को राज्य द्वारा संबोधित किया जाएगा। शिक्षा विधेयक संसदीय समिति में विचाराधीन है और प्रक्रिया पूरी कर इसे संसद से पारित कराया जाएगा। शिक्षकों के आंदोलन से छात्र और अभिभावक प्रभावित होने के साथ साथ स्वयं शिक्षकों को भी नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने देश की समृद्धि और प्रगति के लिए प्राध्यापकों से बौद्धिक सक्रियता दिखाने का आग्रह भी किया। ताप्लेजुंग जिला मुख्यालय फोंगलिंग से पाथीभरा मंदिर दर्शन के लिए जा रही एक बोलेरो गाड़ी में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी विवेक बसनेत के अनुसार मृतकों में ललितपुर महानगरपालिका 10 की 16 वर्षीय आध्या आचार्य, भद्रपुर नगरपालिका 15 के 70 वर्षीय विनोद पौडेल और पौडेल की 69 वर्षीय पत्नी सरिता पौडेल व वाहन चालक ताप्लेजुंग फोंगलिंग नगरपालिका 10 के 42 वर्षीय दुर्गा भट्टराय शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बिजली के खंभे से टूटकर सड़क पर गिरे तार में बोलेरो गाड़ी के फंस जाने के कारण आग लग गई थी। कालीकोट जिले में ट्रैक्टर दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। जिला पुलिस कार्यालय कालीकोट के अनुसार यह दुर्घटना पलाता गांव पालिका वार्ड नंबर 9 के थिरपुर से पलाता वार्ड नंबर 4 के छल की ओर खाद्यान्न और अन्य सामान लेकर जा रहे ट्रैक्टर के पलाता वार्ड नंबर 2 के वुडा डाडा क्षेत्र में गिरने से हुई। मृतकों में ट्रैक्टर चालक मुगु खत्याड, गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 25 वर्षीय चंद्रप्रकाश रोकाया, कालीकोट पलाता गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 21 वर्षीय रविन्द्र विक, उसी क्षेत्र की 32 वर्षीय सदु बुढ़ा, पलाता वार्ड नंबर 5 सल्लीकोट की 26 वर्षीय अंबा शाही शामिल हैं। ट्रैक्टर सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे गिर गया था जिसके कारण यह हादसा हुआ। रूपंदेही जिले की दानव नदी में लापता 3 लोगों में से एक का शव बरामद हुआ है। खोज के दौरान लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 15 वर्षीय राजन यादव का शव मिला है। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय रूपंदेही ने दी। नदी में तैरते समय लापता हुए अन्य 2 बच्चे लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 12 वर्षीय मुन्नू हरिजन और 13 वर्षीय उमेश यादव की तलाश जारी है। ये जानकारी पुलिस ने दी। सप्तकोशी नदी में नहाते समय डूबने से आज 2 लोग लापता हो गए। इटहरी उपमहानगर पालिका 16 बालग्राम के 16 वर्षीय जेनिस आचार्य और 40 वर्षीय नवराज बास्तोला नदी में डूबने के बाद लापता हो गए। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता और डीएसपी योगराज खतिवड़ा ने दी। प्रहरी के अनुसार भांजा जेनिस नदी में नहाते समय डूब गया, जिसे बचाने की कोशिश करते हुए उसके मामा नवराज भी लापता हो गए। दोनों की तलाश जारी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक पर विचार विमर्श अंतिम चरण में है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक पर विचार विमर्श को अंतिम चरण में पहुंचाया है। संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन और सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक संबंधी उप समिति के प्रतिवेदन पर विमर्श के दौरान समिति के सभापति रामहरि खतीवड़ा ने कहा कि समिति की आगामी बैठक में विधेयक को पारित करने के हिसाब से काम हो रहा है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने कहा कि बढ़ते अव्यवस्थित शहरीकरण ने समूचे विश्व में समस्या पैदा किया है। आज से बैंकॉक में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र संघीय एशिया तथा प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग यूएनस्केप के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ राणा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एशिया क्षेत्र कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से एक अव्यवस्थित शहरीकरण भी है। बागमती नगर भूमि एकीकरण परियोजना गौरीघाट में कार्यरत अमीन दिनेश प्रसाद यादव के विरुद्ध 3,29,45,000 रूपये के भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पोडल के मुताबिक विक्रम संवत 2063 भाद्र 8 गते से 2081 आषाढ़ 30 गते तक यादव की वेतन, पारिश्रमिक, आय, भत्ता, नागरिक लगाने कोष से वापस आई रकम, आवास कर्ज लगाए कुल वैध आमदनी 2,42,20,000 देखी गई है। आयोग के मुताबिक यादव की कुल आय रकम में से कुल व्यय रकम को घटाने पर 3,29,45,000 रूपये ऋणात्मक पाए गए हैं और इससे गैरकानूनी तौर पर संपत्ति अर्जित किए होने की पुष्टि होती है। हिमालयी जिला मनांग में सार्वजनिक बस सेवा संचालित हुई है। ट्रैक खुलने के 22 साल बाद जिला मुख्यालय चामे तक सार्वजनिक बस सेवा शुरू हुई है। बीते चैत 7 गते पहली बार यात्रीवाहक बस मनांग पहुंची थी और अब मनांग में सहज रूप में बस सेवा संचालित हो चुकी है। ये बात प्रमुख जिला अधिकारी मातृका आचार्य ने दी। कंचनपुर की शुक्ला फाटा नगरपालिका 2 के ढकनिया में 6,80,00,000 रूपये की लागत से पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के पूरा होने के बाद वार्ड के 510 परिवारों को लाभ मिला है। यह परियोजना संघीय सरकार और नगरपालिका के 50% आर्थिक सहयोग से पूरी की गई। नगरपालिका के पूर्वाधार विकास एवं प्रबंधन शाखा के प्रमुख दीपक धामी के अनुसार इस परियोजना के तहत बोरिंग ड्रिल, 225 घन मीटर की टंकी, 510 परिवारों के घरों में नल कनेक्शन, 22 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने संबंधी सहित सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज सुबह वेटिकन सिटी में निधन हो गया। कार्डिनल केविन फेरिल ने पोप के निधन की घोषणा की। वो 88 साल के थे। फेरिल ने अपनी घोषणा में कहा, रोम के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:35 पर पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली। फ्रांसिस का पूरा जीवन लॉर्ड और चर्च की सेवा में समर्पित था। पोप फ्रांसिस को कैथोलिक चर्चों में सुधार के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद पोप परंपरावादियों के बीच भी लोकप्रिय थे। फ्रांसिस लातिन अमेरिका से बनने वाले पहले पोप थे। पोप फ्रांसिस के निधन से नया पोप चुनने की सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया अब शुरू होगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आंदोलनरत शिक्षकों से तुरंत वार्ता कर विद्यालय लौटने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अपील। रूपन्देही की दानव नदी में लापता तीन लोगों में से एक का शव बरामद, सुनसरी की सप्तकोशी नदी में नहाते समय डूबने से दो लोग लापता और ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।